1987 के पाकिस्तान के भारत दौरे के पहले चार टेस्टों में कोई परिणाम नहीं निकला था। रूखी पिच बनाने की आलोचना झेल रहे क्यूरेटर ने स्पिनरों के लिए एक टेलर मेड पिच बनाई थी। उस मैच में भारत के विकेटकीपर रहे किरण मोरे को वो पिच अभी तक याद है।
होली का माहौल था, होली जैसी पिच थी, वो पिच में कुछ रोल भी नहीं किया था, वैसे पिच छोड़ दी थी क्योंकि 5 टेस्ट मैच का सीरीज था, लास्ट टेस्ट मैच था, रिजल्ट लाने की कोशिश थी वो लास्ट टेस्ट मैच में। पहले गेंद से जो बॉल टर्न हो रही थी उससे मिट्टी भी निकल रही थी और जितने भी फास्ट बॉलर्स थे फास्ट बॉलिंग नहीं कर रहे थे, जैसे कि कोई कपिल पाजी थे, कपिल पाजी ऑफ कटर मारते थे, वसीम अकरम आके उनकी जो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग थी वो भी वो कटर मारते थे, तो बॉल उछलती थी, बॉल बड़ी टर्न भी लेती थी।
पाकिस्तान ने टॉस जीत कर पहले खेलने का फैसला किया लेकिन पूरी टीम मात्र 116 के स्कोर पर निपट गई।
इलाही फेसिंग मनिंदर, वेल टॉस्ड अप, इट्स बीइंग स्पून्ड अप एंड दैट्स द एंड ऑफ इलाही।
मनिंदर सिंह ने सिर्फ 27 रन देकर 7 विकेट लिए। भारत ने जब खेलना शुरू किया तो उसका भी हश्र पाकिस्तान जैसा ही हुआ। वेंगसरकर ने अर्धशतक किया और वो और शास्त्री स्कोर को पाकिस्तान के पार ले गए लेकिन तभी कोलैप्स हुआ और पूरी टीम 145 पर सिमट गई। उस टीम में भारत की ओर से खेलने वाले मनिंदर सिंह याद करते हैं।
मुझे थोड़ा सा नाराजगी थी कुछ खिलाड़ियों से क्योंकि वेंगसरकर ने 50 रन इतने बढ़िया बनाए थे उस पिच के ऊपर जिस तरह से वो खेल रहे थे। मुझे लग रहा था कि अगर ये खेलते रहे तो हमें एक ऐसी लीड मिल जाएगी कि दोबारा फिर बैटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उन्होंने अपनी विकेट थ्रो कर दी। आई थिंक वो एक टर्निंग पॉइंट था मैच का मेरे हिसाब से क्योंकि वो पिच ऐसी थी जहां पर कि बहुत जरूरी था कोई भी बैट्समैन अगर उसकी नजर बैठ गई है, अगर उसको अंदाजा लग गया है कितनी घूम रही है बॉल, किस उछाल से आ रही है, तो उसे गेम को निकाल के ले जाना चाहिए था। लेकिन पिच ऐसी थी, शायद उनको 50 बनाने के बाद तसल्ली हो गई और उन्होंने उस तरह का अटैकिंग शॉट खेला।
दूसरी पारी में पाकिस्तान ने थोड़ा बेहतर प्रदर्शन किया और वो स्कोर 249 तक खींच कर ले गए। इमरान खान ने जावेद मियादाद को रमीज राजा के साथ ओपनिंग करने भेजा और इकबाल कासिम को 5वें नंबर पर प्रमोट किया। उस मैच में पाकिस्तान के हीरो रहे इकबाल कासिम याद करते हैं।
आपको पता है मनिंदर की पहली इनिंग की जो बॉलिंग थी वो जो एक डेफिनेटली आउटस्टैंडिंग बॉलिंग थी, उसकी वजह से सबको ये घबराहट थी कि भाई इसको फेस करने के लिए जरा मुश्किल होगा राइट हैंड बैट्समैन के लिए, तो वो कोशिश कर रहे थे कि जो कोई लेफ्ट हैंड बैट्समैन हो जिसको हम बीच में रखिए ताकि उसको फेस करना जरा आसान होता है ना, उसके लिए ऑफ स्पिनर हो जाता है वो। मैं अभी हम तो बॉलिंग करके दोपहर में आए थे, मैच जब शुरू हुआ तो इमीडिएटली 3:30 बजे इवन पी के फौरन बाद ही फौरन था कि यार तुम बैट, जावेद और इमरान दोनों मुतफिक का तौर पे इस बात पे एग्री थे कि बैठ कर, तो मैंने देखा तो मैंने कहा यार मैं अभी तो ना नाइट वॉचमैन की ना कोई ऐसी पोजीशन है, जब मैं गया हूँ तो आशीष तो सलीम मलिक वाज देयर, उसने कहा कि इकबाल भाई इतना इतना ब्रेक हो रहा है, आप ऐसा करें कि कोशिश करें कि जो मिले उसको मारें ताकि वो रन बन जाए। ये कि रन बनाना मुश्किल है, मनिंदर आपको हिलने नहीं देगा और वो यादव से आप आउट हो जाएंगे दूसरी तरफ। फिर मैंने चांस लिया तो उसमें फिर ये हुआ कि थोड़ा वक्त भी निकला विकेट के ऊपर, कुछ रन भी बनाए मैंने।
पाकिस्तान के स्कोर को 249 तक ले जाने में सबसे बड़ी भूमिका थी सलीम यूसुफ की जिन्होंने 41 नाबाद रन बनाए और तौसीफ के साथ मिलकर 9वें विकेट के लिए 51 रन जोड़े। अंततः मनिंदर ने सलीम जाफर को आउट कर पाकिस्तान की पारी का अंत किया लेकिन वो अपनी बॉलिंग से खुश नहीं थे।
मैंने अच्छी बॉलिंग नहीं की, एक तो इतना ज्यादा प्रेशर आ गया था, दूसरा हर कोई आके कोई ना कोई सलाह दे रहा था जिसमें मेरी जो अपनी सोच थी वो कहीं ना कहीं खो गई क्योंकि सीनियर खिलाड़ी सलाह दे रहे थे, कुछ सीनियर खिलाड़ी जो पहले खेले हुए थे वो कुछ सलाह दे रहे थे कि इस पिच के ऊपर इस तरह से बॉल करिएगा, तो उसमें मैं कहीं ना कहीं खो गया और जो मैंने अपनी खुद की बॉलिंग की थी पहली इनिंग्स में उससे मैं भटक गया। उसकी वजह से मुझे लगता है कि जो 50 रन जिसकी आप बात कर रहे हैं कि फालतू बन गए पाकिस्तान टीम के, मुझे लगता है 50 नहीं 70 रन फालतू बन गए।
भारत को जीतने के लिए 221 रनों का लक्ष्य मिला लेकिन वसीम अकरम ने लगातार 2 गेंदों पर श्रीकांत और मोहिंदर अमरनाथ को आउट कर पाकिस्तान को आगे कर दिया।
Amarnath out first ball, caught behind,
जब तीसरे दिन का खेल खत्म हुआ तो भारत के 4 विकेट पर 99 रन थे। अच्छी बात यह थी कि गावस्कर अभी भी 52 पर जमे हुए थे। उस मैच को कवर कर रहे अयाज मेमन याद करते हैं।
बाल कासिम को मैं मिलने गया था रेस्ट डे पर, बैंगलोर में वेस्ट इंडीज होटल में टीम खेली थी, मेरे ख्याल से होली का ही दिन था रेस्ट डे का, और इंटरव्यू करना था मुझे, तो दोनों तौसीफ और इकबाल कासिम एक ही रूम शेयर कर रहे थे, और अपॉइंटेड टाइम पे जब मैं वहां पहुंचा तो खामोशी में तीनों बैठे, ना वो एक दूसरे से बात कर रहे, ना मैं मुझसे बात कर रहे, तो मैंने उनसे पूछा भाई ये इतनी खामोशी की क्या जरूरत है, क्या बात है? तो उन्होंने कहा अभी तक बाबा आदम बैटिंग कर रहे हैं, यानी गावस्कर जो नॉट आउट थे। तो मुझे थोड़ा सा इंट्रीग हुआ कि बाबा आदम कैसे, बोल रहे यार ये इस उम्र पे भी जिस तरह से खेल रहा है, और कप्तान तो हमारे से खफा है, कप्तान यानी इमरान खान की, हम तो इसकी विकेट जल्दी नहीं लेते हैं, तो ये मैच तो जितना मुश्किल हो जाएगा और हमारा फ्यूचर जो है करियर उस पे भी प्रॉब्लम हो सकता है।
उस जमाने में टेस्ट मैच के दौरान एक रेस्ट डे हुआ करता था, इत्तेफाक से होली के दिन रेस्ट डे पड़ा था। बीबीसी के हमारे पुराने साथी कमर अहमद बीबीसी और द टाइम्स के लिए बेंगलोर टेस्ट कवर कर रहे थे।
मैं अपने कमरे से निकला टेस्ट शुरू होने से पहले, तो पाकिस्तान के फोटोग्राफर फारूक उस्मान ने मुझे कहा कि समर भाई आप ये वेस्टर्न होटल के स्विमिंग पूल की तरफ न जाएं। मैंने कहा क्यों? बोला वो आज होली है, सबको उठा उठा के ये स्विमिंग पूल पे फेंक रहे हैं। कलकत्ता के किशोर भिमानी को उठा के फेंक दिया है रंग वंग डाल के, और उनका एक टो टूट गया है, वो फंस के गैप में स्विमिंग पूल के। मैंने कहा यार मैं तो नहीं जाऊंगा उस तरफ, लेकिन मैंने थोड़ी देर में देखा कि किरण मोरे, जावेद मियांदाद और ये अमृता सिंह वहाँ पे थी एक एक्ट्रेस, उन्होंने देखा जो मुझे, तो वो भागे हुए आए, तो मैंने उनको कहा देखो भाई, क्योंकि जावेद मियांदाद और इमरान खान मेरे पास लंदन में मेरे फ्लैट में रहते भी थे गायब रखाए, तो मैंने किरण मोरे से और जावेद से कहा देखो मुझको हाथ नहीं लगाना, क्योंकि मेरे जेब में पेपर है, बीबीसी के वो कार्ड है जिससे रिपोर्टिंग करते हैं, तो ये सब खराब हो जाएगा, मेरे पेपर्स वगैरह, तो मुझसे कोई गड़बड़ की तो मुझसे बुरा तुम लोगों के लिए कोई नहीं होगा। जावेद ने कहा खबर हम आपके साथ कुछ नहीं करेंगे, हम आपके मांग में सिर्फ सिंदूर लगाएंगे। इन्होंने मेरे मांग में सिंदूर लगा के कहा कि आप यही खड़े रहे। मैंने कहा क्यों? बोला तमाशा देखें आप। इन्होंने क्या किया कि शायद इमरान को पता पड़ गया था कप्तान को, उसको जाकर आगे खड़े हो गए, दो पीछे गए और शीशा तोड़ दिया खिड़की का। इमरान सचेस के प्लेयर गोरा के साथ बैठा गपशप मार रहा था, वो जब आगे के डोर खोल के निकला तो उसको यहाँ से पकड़ लिया लोगों, उसके गाल में दोनों तरफ एक तरफ काली ग्रीस और एक तरफ रेड ग्रीस मलती, उसने शोर मचाना शुरू किया और जब शोर मचाए तो ये वहां से भागे, और लेकिन रात भर और दूसरे दिन इमरान वो ग्रीस छुड़ाता रहा, लेकिन वो ग्रीस उतरी नहीं काली और लाल, और उसी ग्रीस ने कल्ले पे लगा हुआ, गाल पे लगा हुआ, वो बॉलिंग कर रहा था।
उसी दिन शाम को भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने दोनों टीमों के खिलाड़ियों के लिए रिसेप्शन रखा था, वहीं इकबाल कासिम की मुलाकात भारत के महान स्पिनर बिशन सिंह बेदी से हुई थी।
5 बजे का टाइम था, तो मैं तो उसी ऐसे लगा कि हम तो तैयार होके चलो चलते हैं यार, ये अटेंड कर लें, टेंशन हो रही है, बस सलाह दिन भी गुजर रहा, चल चलते हैं। बेदी साहब पहले आ गए, तो शायद हमने उनसे हेलो हाई किया, तो बैठ गए उनके साथ ही बातें करने लगे। बातों में मैंने उनको मुबारकबाद दी कि भाई मनिंदर सिंह आपका शागिर्द बहुत अच्छा है, उसने बड़ी जरूरत बॉलिंग की पहले इनिंग में, या उनको ये आइडिया नहीं था कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो वो बेचारों ने कहा जो यार काका तेन की पता है ये देख, उन्होंने पहली इनिंग में तो ठीक है उसने आउट किए, मगर यार दूसरी इनिंग में इतने रन करवा दिए, इतनी बॉलिंग है यार, इतना बॉल ब्रेक हो रहा है और ऊपर से और उसके ऊपर जोर लगा रहा है, तो भाई बैट्समैन बीट तो बॉलर बीट तो विकेट बीट तो सारे बीट हो रहे, तो ऐसे थोड़ी यार ऐसी विकेटों पर गेंद करना चाहिए। तो कहता ये टारगेट मेरा जरूर है, लेकिन मैं आई एम नॉट हैप्पी विद दिस बॉलिंग। मुझे वो चीज उनमें से ये नजर आई कि यार इस विकेट के ऊपर जोर लगाने की जरूरत नहीं, उनका कहने का मकसद था कि मनिंदर और अच्छी बॉलिंग कर सकता था, तो वो बेसिकली उन्होंने राय गुफ्तगु मनिंदर को डिस्क्राइब किया था, तो जो मैंने पिक किया और वो फिर हमने मैंने तौसीफ ने ये सोचा कि यार हम भी ये करते हैं कि इसमें ज्यादा जोर नहीं लगाते, हमने गेंद को विकेट के अंदर ही रखना है, बस जोर नहीं लगाना है।
कासिम और तौसीफ ने बेदी की सलाह पर पूरा अमल किया, लेकिन उनका सामना सुनील गावस्कर से था जो अपने अंतिम टेस्ट में अपने जीवन की सर्वश्रेष्ठ पारी खेल रहे थे।
And 123
के स्कोर पर अजहरुद्दीन बीट हुए और उन्होंने इकबाल कासिम को रिटर्न कैच दे दिया।
And it's caught and bowled. What a magnificent catch! Absolute blinder by Kal Kasim, and Pakistan have removed Azharuddin with 123 for 4.
शास्त्री और गावस्कर स्कोर को 155 तक ले गए। तभी शास्त्री को इकबाल कासिम ने कॉट एंड बोल्ड कर दिया।
इकबाल कासिम आउट, कॉट बोल्ड। वंस अगेन अ फाइन कैच बाय इकबाल कासिम, ही गॉट द ब्रेक थ्रू।
उधर गावस्कर ने न सिर्फ एक छोर संभाला हुआ था बल्कि इकबाल कासिम और तौसीफ की भयानक टर्न लेती गेंदों पर स्ट्रोक लगा रहे थे। लगभग हर गेंद पर पाकिस्तानी गेंदबाज अपील कर रहे थे, यहां तक कि पाकिस्तानी विकेट कीपर अपील करते हुए दौड़कर अंपायर तक पहुंच रहा था, लेकिन गावस्कर पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा था। किरण मोरे याद करते हैं,
मैंने ऐसी इनिंग अभी तक मेरे जिंदगी में देखी नहीं, ऐसे पिच पर और ऐसे क्वालिटी गेंदबाज के सामने ऐसे पिच पे बल्लेबाजी करना जहाँ पे बल्ले पे बॉल लग ही नहीं रहा था और उस पे जाके उन्होंने जो बल्लेबाजी की कि सेंटर ऑफ द बैट बॉल लगती थी और कहीं भी बीट नहीं हो रहे थे और जब बीट हुए तभी वो आउट हो गए और उन्होंने 264 बॉल खेले और पूरे आप देखिए पूरी आप दोनों स्कोर कार्ड देखिए तो किसी ने 120 130 के ज्यादा गेंद खेली नहीं।
मैंने कराची फोन कर इकबाल कासिम से पूछा कि गावस्कर की उस इनिंग के बारे में आप क्या सोचते हैं।
क्या बात है, क्या बात, गावस्कर, ये मैं तो कहता हूँ कि वो इनिंग जो है गावस्कर की आपको सबको दिखानी चाहिए। मैं तो सोचता हूँ एजुकेशन के तौर पर रखनी चाहिए कि लोग उसको देखें कि कैसे स्पिन बॉलिंग को खेलना चाहिए, लेसन है। इतना इतना बॉल ब्रेक हो रहा है और वो शख्स खड़ा हुआ है, कैसे लेफ्ट करता था, किस तरीके से एक शीट एंकर की तरह दीवार बन के खड़ा हुआ था और उसने जो बैटिंग की है वो कमेंडेबल बैटिंग की है। उनको गेन करना जो था वो भी एक अपने अंदर किस्म का एक ऑनर इंसान फील करता है। उनको बॉलर के हाथ से गेंद निकलता था, मेरे हाथ से इतना ब्रेक इस ऐसी विकेट के ऊपर उनको वहां से वार्डिया करते थे कि यार ये गेंद सीधा रहेगा, ये बॉल ब्रेक होगा, लंबा ये साइड पर करा होगा।
जब ये लगने लगा था कि गावस्कर अकेले ही भारत को पाकिस्तान के पार ले जाएंगे, उन्हें इकबाल कासिम की एक ऐसी गेंद मिली जिसे खेल पाना शायद किसी के लिए संभव नहीं था।
अजीम जबरदस्त भारत का बैट्समैन जो पाकिस्तान और पाकिस्तान की फतेह और कामयाबी के दरमियान एक जबरदस्त किसान की तरह खड़ा था। आउट,
हाफ शॉट खेलते थे, पूरा लंबा स्ट्रेच नहीं करते थे तो वो उसकी वजह से गेंद जो था उनको वो आराम से बीट हो जाते थे, निकल जाती थी, कोई हार्म नहीं था और हम हा हू करते रहते थे लेकिन उनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता था, ना वो कंफ्यूज होते थे ना वो कंसंट्रेशन लूज होते थे। वो एक बॉल जिसपे वो स्लिप में आउट में वो बहुत कम ऐसा हुआ होगा कि जब गेंद निकला हो और कम ब्रेक हुआ हो और वो बल्ले को छूती हुई लेती हुई ऊपर चली गई, बस वो एक उनसे वो एक थोड़ी सी कॉन्सेंट्रेशन की लैप्स खेले या विकेट की वजह से कह लें तो वो ब्रेक हुआ तो अगर नॉर्मल ब्रेक होता तो वो शायद बीट कर जाते, वो अपने तरीके से नॉर्मली आए थे मगर वो नॉर्मल से कम ब्रेक हुआ, वो बल्ले पे लगी और स्लिप पे चली गई।
गावस्कर के आउट होते ही ये साफ हो गया कि पाकिस्तान जीत की तरफ बढ़ रहा है। रॉजर बिनी ने छक्का लगाकर उम्मीद की एक किरण दिखाई लेकिन वो क्षणिक था।
ये हकीकत बात है, एक दूसरे को पकड़ के हम रो ही रहे थे कि भाई वो इतनी एक्साइटमेंट थी कि खुशी के खुशी में इंसान को अनबिलीवेबल विक्ट्री थी। फिर इंडिया के अंदर जो स्पिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसलिए आपसे पूछता कि इंडियन स्पिनर जो है दुनिया में माने जाते हैं, इंडियन बैट्समैन जो है वो माने जाते हैं वो स्पिन खेलने के लिए, इस लिहाज से हम तो बिल्कुल अननोन कम्युनिटी थे सारे स्पिन वॉज कंसर्न में तो सी तो इस लिहाज से हम ये था कि अल्लाह ने हमें वो इज्जत दी तो हमारे लिए बहुत ही एक्साइटिंग बात थी।
मैच के बाद इमरान खान ने कहा कि ये सुनील गावस्कर के जीवन की सर्वश्रेष्ठ पारी थी। जावेद मियादाद ने भी अपनी आत्मकथा कटिंग एज में लिखा, मैंने स्पिन लेते पिच पर इतनी बेहतरीन पारी अपने जीवन में नहीं देखी। सुंदर राजन ने टाइम्स ऑफ इंडिया के 17 मार्च 1987 के अंक में लिखा, क्या बेहतरीन खेल, क्या गजब की तकनीक, इस दिन गावस्कर भारत की तरफ से वन मैन आर्मी थे। आप यकीन नहीं करेंगे वो दोनों छोरों से खेल रहे थे। सबसे बड़ी तारीफ मुदस्सर नजर की तरफ से आई।
एक ऐसी पिच पर जहां टेस्ट मैच करवाया ही नहीं जाना चाहिए था और जहां गेंद इतना उछाल और मीलों टर्न ले रही थी, गावस्कर ने बार बार इकबाल कासिम को टर्न के खिलाफ मिड विकेट और मिड ऑन पर मारा। ऐसी पिच जिस पर किसी और के लिए खड़ा होना भर दुश्वार था, गावस्कर इस तरह बैटिंग कर रहे थे जैसे वो किसी सीमेंट पिच पर खेल रहे हों। हम सबके लिए बैटिंग का ये एक ऐसा पार्ट था जिसे हम तो क्या बल्लेबाजों की आने वाली पीढ़ियां कभी नहीं भूल पाएंगी।
रेहान फदल, BBC दिल्ली।